हमारा अगला टॉपिक है रुकावट से आगे। कौन है जो सर उठा के जीना नहीं चाहता? हर इंसान ही एक बावकार, पुरसकून और खूबसूरत जिंदगी की ख्वाहिश रखता है। आप भी ऐसे ही है ना? सर उठाकर जीने में क्या हर्ज है? सर उठाकर जीने में बुराई ही क्या है? सर उठा के जीना मुश्किल है या सर झुका के? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि सर झुका के जीते रहना बेहद मुश्किल काम है। हम सोचते हैं ना बड़ा आसान है, सर झुका दिया। हालांकि होता क्या, जब आपकी इज्जत नफ्स पे हर रोज ताबड़तोड़ हमले हों और तकलीफ के इस लम्हे में आप खुद का साथ भी ना दे सकते हो, तो ऐसी कड़वी कसीली जिंदगी जीना किसे आसान लगता होगा। यानी सर झुका के जो जीते हैं वो तो बेचारे मजलूमियत की जिंदगी बसर करते हैं, कैदी हैं वो। इसके बावजूद मेरे जाती तजुर्बे के मुताबिक ऐसे लोगों की एक खासी तादाद हमारे आसपास मौजूद है जिन्हें सर उठाकर जीने की ख्वाहिश है ना जरूरत। आप अपने आप से पूछें, क्या वाकई चाहती हूं कि जरा सा तो ऊपर उठूं, या बस कहते हैं जैसे गुजर गई बाकी भी गुजर जाएगी? अक्सर को इस बात का यकीन ही नहीं है कि सर उठा के जीना मुमकिन भी है। इन्हें इस किस्म की किसी जिंदगी का इदराक है ना जुस्तजू। यानी बहुत सारे लोगों का तो ये ख्वाब ही नहीं है कि कभी उनका सर भी उठे। दूसरी किस्म इन लोगों की है जिन्हें सर उठा के जीने की बात सीधी दिल पे लगती है। ये लोग उठ खड़े होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुशियों और कामयाबियों से भरना चाहते हैं, लेकिन चंद कदम उठाने के बाद अपने रास्ते में हायल रुकावटों से घबरा के रुक जाते हैं। अगला कदम उठाने की हिम्मत और सकत रखने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। ऐसा होता है ना, शुरू करते हैं लेकिन फिर हिम्मत नहीं करते। सर उठा के जीने की तरफ जोश से लपकने वालों का बलबला ठंडा क्यों हो जाता है? इनके मोटिवेशन के गुब्बारे से हवा क्यों निकल जाती है? इनके पांव बोझल क्यों हो जाते हैं? आंखें ख्वाबों के ताकुब में थक क्यों जाती हैं? होता ना ऐसा, हम ऐसे जोश से उठते हैं फिर एकदम गुब्बारे से हवा निकलती है। कौन सी रुकावटें इनका रास्ता रोकती हैं, आइए देखते हैं। छह किस्म की रुकावटें हैं जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं। सबसे पहली रुकावट, डर जिंदाबाद। डरने लगते हैं। डर ख्वाबों का दुश्मन है, एतमाद का कातिल है, कामयाबी का वैरी है, जो सर झुकाने में माहिर है। नाकामी के डर से हम कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। अगर मैं इंटरव्यू में गया और नाकाम हो गया तो बड़ी बदनामी होगी, इससे बेहतर है मैं जाऊं ही नहीं, ताकि दूसरों के सामने शर्मिंदगी से बच जाऊं। और यहां आप सबसे कहूंगी, हमें ये डर होता है कि माइक पे आके बात करेंगे तो सब हंसने लग जाएंगे, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। कितने लोग हैं जो माइक के नाम से ऐसे कांपते हैं जैसे अल्लाह के नाम से कांपना चाहिए। स्टेज पे नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, पब्लिक डीलिंग, बाद लोग फोन उठा के दे देंगे, आप बात करें, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप सोचो डर किस बात का? डर सिर्फ उसको होता है जो दूसरों को बड़ा समझता है। तो एक इंसान को अपने दिल से डर को निकालना, नाकामी का डर। हाँ भाई कोई बात नहीं, अब माँ को देखिए कि बच्चे को गोद से ही ना उतारे कि ये चलेगा, खड़ा होगा तो गिर जाएगा, फिर गिरेगा तो पाँव में मोच आ जाएगी, मोच आएगी तो प्लास्टर लगेगा, फिर 6 हफ्ते लगे रहेगा, फिर बिस्तर पे रहेगा, फिर इसकी टांग टेढ़ी हो जाएगी, फिर ये सारी जिंदगी लगड़ाएगा। कभी माँ बच्चे को उतरने देगी गोद से? तो डर दुश्मन है हमारी कामयाबियों का। कोई काम आप करना चाहते हैं, आपने नहीं कभी किया, सीख लें, फिर क्या होगा, गलतियां करें, बहुत अच्छी बात है, आपकी गलतियां भी सर आंखों पे, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि आप काम सीख रहे हैं। मैंने नाकामी के डर में मुब्तला कई लोगों को खुद से ये कहते सुना है, चूंकि मुझे नाकाम हो जाने का डर है इसलिए मुझे भाग ही जाना चाहिए। जबकि इसी डर के मारे कुछ लोग ये भी कहते हैं, चूंकि मुझे नाकाम होने का खौफ है इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत, ज्यादा तैयारी और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि मैं भागने की बजाय आगे बढ़ने पर ताकत खर्च करूं। बात समझ रहे? बस आप देखिए ना, किसी को कंप्यूटर से डर लगता है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकती, तो क्या उसको कंप्यूटर से भाग जाना चाहिए या और ज्यादा कंप्यूटर के पास बैठकर सीखना चाहिए? और सीखना चाहिए ना, खुद ही आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। भागने से तो कभी भी नहीं आएगा, तो भागना नहीं चाहिए बल्कि और मेहनत करनी चाहिए। सच तो यह है कि इस खौफ ने मुझे भी कितनी बार इस वक्त मुंह के बल गिराया है, जबकि सर उठा के खड़ा होना मेरे लिए और मेरे प्यारों के लिए बड़ा जरूरी था। देखिए, बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसके लिए सर उठा के खड़ा हो, उसको सपोर्ट करे, और अगर शौहर उसको सपोर्ट ना करे, जितना मर्जी अच्छा हो, उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सर झुकाए होते हैं ना, वो बाज़ दफ़ा दूसरों के लिए भी दुखों का सबब बनते हैं। एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि आपकी जिंदगी में किसी किस्म का डर ना हो, तो आपकी जिंदगी क्या रुख इख्तियार करेगी? कौन सी नामुमकिन दिखने वाली चीजें मुमकिन हो जाएंगी? कौन से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे? कौन से अधूरे वादे मुकम्मल हो जाएंगे? चलिए जरा मैं आप सबको इन्वॉल्व करती हूँ, आप अपना अपना डर बताइए। ससुराल में कौन रहता है? ससुराल का डर, देर से जाऊंगी, सास का मूड बन जाएगा, फिर खाना नहीं पकेगा। है किसी का आप में से ये इशू? नहीं है तो आगे चलते हैं। किसी का नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मियाँ जी का डर, खाना नहीं पकेगा तो मियाँ नाराज हो जाएंगे, अचानक ही ना आ जाए ऑफिस में से, पता नहीं मियाँ के सर में दर्द हो गया, फिर अचानक छुट्टी लेके घर ना आ जाए तो फिर उनको चाय की प्याली कौन पिलाएगा? ये किस किस का डर है? मियाँ का डर किस किस को है? लगता है मैं फारसी बोल रही हूँ, या मैं बंगाली बोल रही हूँ, या मैं कुछ और बोल रही हूँ। जी आप और आप इमेजिन करें, ये जो आखिरी बात है ना, कि आप एक दफ़ा वो ज़िंदगी सोचें जिसमें कोई डर ना हो। मैंने जब ये बात बोली थी ना अभी, तो मेरे जहन में पता क्या आया था कि बच्चा है और जाके वो बिजली के प्लग में उंगलियां डाल रहा है, और बिजली के करंट का डर ही कोई नहीं है। कितनी मज़े की ज़िंदगी हो। याद रखिए, खौफ हमने पाले होते हैं। मियाँ को डरने की चीज़ नहीं है, वो प्यार करने की चीज़ है, वो समझने की चीज़ है, वो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। फिर आप सोचें कि मियाँ की किस बात से डरती हूँ? फिर हर मियाँ की भी एक किस्म होती है ना, वैसे तो सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन चलिए सोचिए। कुछ मियाँ गुस्से में चुप कर जाते हैं, कुछ बहुत बोलते हैं, कुछ चीखते हैं, कोई गालियाँ देते हैं, कोई घर छोड़ जाते हैं, कोई घर से, ये कुछ चर्चे होंगी ना। आप सोचिए कि मेरे मियाँ का क्या रवैया, यानी मुझे मियाँ के किस रवैये का डर है? ठीक है, ये लिखिए आप। फिर आप सोचिए, चलिए एक दो सिर्फ देखते हैं, बाकी आप खुद ही सोच लीजिए। जिन औरतों का अपने शौहर की तरफ से डर होता है, रुकावट है, उनके अंदर खौफ है, तो वो कहती है मेरे शौहर जो है ना, वो गुस्से में बहुत ऊंची बोलते हैं। ठीक है, अब वो गुस्से में ऊंची बोलते हैं, आप लिखिए जरा। अब अल्लाह ना करे अगर आप में से किसी के शौहर गुस्से में ऊंची बोलते हैं, मैं आपको सच बताऊं, ये एहसास से कमतरी की अलामत होती है। मैं आपको भी बताऊं कि जैसे ये देखिएगा, अभी मैं माइक बंद करूंगी, अब मैं बोल रही हूँ ऐसे। अब मुझे एहसास है कि मेरी आवाज़ वो पीछे सिस्टर मुमताज़ तक नहीं जा रही ना, तो मैं करूँगी, वो ये कहते हैं। अब मैं ऊंची क्यों बोली, समझ आई? कि मुझे एहसास है कमतरी है, कि मेरी आवाज़ कम है, पीछे की लाइन तक नहीं पहुँची। हमेशा याद रखिए कि जो लोग ऊंची बोलते हैं ना, वो अंदर से कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। चलिए, बीमारी तो पता लग गई शौहर साहब की, कि वो गुस्से में ऊंची बोलते हैं। अब इसका इलाज क्या है? वो बोले आप सुनते रहे? बिल्कुल भी नहीं, वो तो और बोलेंगे। चलिए इसी बात पे फिर आती हूँ, ये देखिएगा। अब मैं बोल रही थी, आवाज़ कम हो गई, अब मैं ऊंची बोलती हूँ। जब मैं ऊंची बोलूँगी तो मेरा आवाज़ बैठेगा ना। अब आप मेरे से पढ़ रहे थे, और मैं ऊंची ऊंची इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी आवाज़ इधर भी जाए, चलो इसी के थ्रू शायद बाहर रिसेप्शन पे भी और कैंटीन में भी चली जाए। क्या ये इलाज है? बताइए मुझे, मैं कितना को और चीखूंगी? अगर यहाँ मैं 4 घंटे पढ़ा सकती हूँ, मेरा हले मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकूंगी, तो ये इलाज नहीं है। तो लिखिए अपने पास, شوہر کو اونچی اونچی بولنے کا موقع دینا یہ علاج نہیں ہے، یہ تو اس کی بیماری کو اور بڑھانا ہے۔ آپ کیا کریں پھر، اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ علاج کیا ہے؟ روٹ کاز کیا تھی؟ احساس کمتری، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بجائے اس کے انتظار کریں کہ وہ غصے میں آئیں، چیخیں چلائیں، برتن توڑیں، آپ عام وقت میں ان کا احساس کمتری دور کریں۔ آپ ان کو یہ کمپلیکس نہ دیں۔ دیکھیں یقین کریں کہ بعض انسیکیور ہوتے ہیں، بعض لوگ ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ رکاوٹ لگتے ہیں۔ انسیکیور کیسے ہوتے ہیں؟ یہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا، ہائے یہ چلی گئی پیچھے سے مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، ہائے اگر میرے دل کو درد ہوئی اور یہ پاس نہ ہوئی تو یہ مجھے گولی نہیں نکال کے دے گی، یہ اندر کے گلٹ ہیں۔ ایسے کو کیا کریں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ایسی بیویوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہروں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ میاں صاحب میں کسی وقت بھی جا سکتی ہوں، کیا بنے گا آپ کا؟ جیسے مجھے اپنے شوہر کا ایک رویہ معلوم ہے، مثال دیتی ہوں آپ کو، جیسے رکاوٹیں آپ بول رہے ہیں نا کہ کسی کے اونچی بولیں گے کسی کے نہیں، مثال ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے اگر میں نہیں بناؤں گی، یا میں ساتھ نہیں بیٹھوں گی تو نہیں کھائیں گے، ایسی اگزامپل لے لیں، تو مجھے ان کو عام حالات میں بتانا چاہیے کہ دیکھیے کوئی ساتھ نہیں رہتا ہمیشہ، آپ اس عادت کو بدلیں۔ ہر سسٹر اپنے گھر والے رکاوٹ، کیونکہ ہماری رکاوٹیں عموماً ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا، تو آپ ان کو اپلفٹ کریں، ان کو سیلف سفیشینٹ کریں، آپ ان کے اندر سے یہ کمزوری نکال دیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور رویہ کیا ہوتا ہے مردوں کا، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے میاں جو غصے میں خاموش ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ ان کو غصہ ہی دلائی رکھیں، ہیں کسی کے جو خاموش ہو جاتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ بولنے والے خطرناک ہیں؟ نہیں جناب، جس کے جو ہیں وہی خطرناک ہیں، دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں، دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ پہلے میں ہمسایوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور دوسرے میں آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ اب آپ اس میاں کو ہم ذرا سے، میاں تو بیچارے ایک حجت ہے نا، یہی سب کچھ ساسوں کا بھی ہو سکتا ہے، بہویں بھی، آج کل تو ہر طرح سے ہی ہو سکتا ہے۔ امیجن کر لیں ایک شخص ہے جو غصے میں خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، اب آپ سوچیں کہ یہ خاموش ہے، غصہ آئے گا تو خاموش ہو جائے گا، اب آپ کی یہ رکاوٹ ہے۔ اس وقت ہم کوئی ان کے رویے نہیں دیکھ رہے، ہم اپنی رکاوٹیں دور کریں۔ مثال ہے کہ میں گھر دیر گئی تو میرے میاں صاحب خاموش ہو جائیں گے، یہ ایشو ہے نا، وہ بولیں گے نہیں میرے سے، تو آپ کیا کریں؟ کوئی آپ میں سے بتائے ذرا، کیسے بلائیں گے ان کو؟ گانا گائیں گے اور ہمارا گانا سن کے وہ اور ناراض ہو جائیں گے، ہیں کیسے منائیں گے آپ ان کو؟ آپ نے یہ رکاوٹ دور کرنی ہے۔ تو آپ انہیں کیا کہیں؟ آپ بولتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، آپ کتنے حسین لگتے ہیں جب آپ بولتے ہیں۔ بعض میاں خاموش ہوتے ہیں، اسمائل نہیں دیتے، تو آپ انہیں کہیں آپ کا اسمائل کتنا خوبصورت ہے، آپ کو تو مجھے آپ کی سب سے پہلی چیز جو اچھی لگی تھی نا وہ اسمائل لگی تھی، پگھل دے۔ یقین کریے صرف لاڈ ہوتے ہیں، کان پکڑ لیں، آپ کو پتہ نا دیر ہو گئی، آپ کو رکاوٹ ہے نا اس کی، دیر ہو گئی گھر جائیں نا تو اپنے کان پکڑ لیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، کچھ ساتھ لے جائیں، ان کی پسند کی چیز لے جائیں، جانے سے پہلے کوئی اچھا سا میسج کر دے، چائے بنائے میرے لیے، اس کا یہ کہ میاں آ کے مجھے کھانا نہیں بنایا، آپ نے میرا کھانا بنا دیا، میں آ جاؤں گھر، گھر صاف کر دیا آپ نے، میں اب آ سکتی ہوں۔ یقین کریں یہ ٹیکٹ ہے زندگی کا، ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ، آپ ان کو کیسے کھیلتے ہیں۔ اور اگر کبھی وہ غصے میں آپ کو برا بلا کہیں، یہ بھی ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ تم ایسی تم ویسی، اور پھر کچھ ذرا پیچھے ہی چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ پچھلوں تک، تو آپ کے آپ کو ایسی بری وائف ملی، مجھے تو آپ پہ رحم آ رہا ہے، سو پٹی، آپ کی وائف اتنی خراب ہے، اتنی بری وائف ملی، افسوس۔ آپ ان کے ساتھ ایسی بات کریں، آپ یقین کریں کہ ان کی ہنسی نکل جائے گی۔ بہت ساری بیویاں ایک راز نہیں جانتی کہ مردوں کو جولی بیوی اچھی لگتی ہے۔ ایک تو ہم دیر سے جاتے ہیں، ایک مسکین شکل بنا لیتے ہیں رونے والی، اوپر سے ماتھے پہ تیوریاں بھی ہوتی ہیں، اندر سے ڈارے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں ہم غصے والے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں آپ جولی بن کے دیکھیں، کسی بندے کو بھی آپ پہ غصہ بھی آیا ہوگا نا، غصے سے مراد یہ کہ آپ جیسے یہی لاڈ والے غصے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا، कुछ कर लें, लेकिन ये रुकावट को इतनी बड़ी नहीं, दिल से डर निकाल दें, मैं तो नहीं डरती किसी से अल्लाह के सिवा, ये कहें। इंसानों का क्या डर, इंसान कुछ नहीं कर सकते। अपने दिल से हर डर निकालते हैं। बातों का डर होता है हमें, अगली चीज देखते हैं, ये सारी पढ़ेंगे ना, फिर इसके बाद कुछ और डर होंगे तो आपको बताऊंगी। दूसरी रुकावट जो हमारी होती है, मुझे कबूल कर लो। हम चाहते हैं सब हमें कबूल करें। मतलब क्या इसका, आप ये ख्वाहिश करते हैं कि सब लोग मुझे कबूल करें, तो भाई इसमें बुराई क्या है, बहुत बड़ी बुराई है। ये ख्वाहिश बुराई तब बनती है जब दूसरों की तरफ से कबूलियत का मिलना आपकी जरूरत बन जाता है। ख्वाहिश और जरूरत में बड़ा फर्क है। ख्वाहिश पूरी ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पूरी ना हो तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। पानी, हवा और नींद की तरह, अगर मुझे कबूल करो जरूरत बन जाए तो जीना दोबर हो जाए। ये जुमला मैं दोबराती हूँ, अब लिखिएगा मोटा मोटा करके लिखें। पानी, हवा और नींद की तरह, अगर, अब ये जुमला ना कॉमास में कीजिए, मुझे कबूल करो, ये चौथी चीज होगी ना, अगर ये जरूरत बन जाए तो जीना दोबर हो जाए। दूसरों की तरफ से कबूलियत से मेरे दिल को भी सुकून मिलता है, लेकिन ये मेरी जरूरत नहीं है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मेरी जिंदगी मफलूज नहीं बनती। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसे ऑक्सीजन की तरह जरूरी समझ लेते हैं। कमरे से किसी ने ऑक्सीजन गायब की, या आपकी जात को तमगा हुस्ने कारकर्दगी ना मिल सका, दोनों सूरतों में आपकी जिंदगी दांव पर लग गई। जूं ही आपको लगा कि किसी ने आपकी जात की नफी की है, आपका सर उठने की बजाय झुक जाता है। ये जरा जुमला भी समझ लीजिए कि मुझे कबूल करो क्या है। देखिए, हर बंदे से आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, बहुत जगह आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। मिसाल देती हूँ ससुराल की, अब तो ऐसी ना बहुएं रही ना सासे रही, लेकिन अमूमन हमारे पाकिस्तान के कल्चर में शादी के बाद एक बहुत बड़ा महाज, और बाज हालात में जैसे कहना चान अचीवेबल, उर्दू में क्या कहेंगे, नाकाबले तस्खीर महाज क्या होता है, कि सास को खुश कर लो, ये ना हासिल होने वाली चीज़ है। अच्छा, और मज़े की बात यह कि ये महाज उस वक्त और भी मुश्किल हो जाता है जब घर में पहले से एक बहू भी हो, और तीसरी मुश्किल यह है कि वो पहली बहू बहुत ही अच्छी हो, सुगड़ भी और सब हो। बस अब आपके लिए तो एक जुए शीर है, मैंने इनकी नज़रों में जचना है, मैंने उससे अच्छा बन के दिखाना है। आप कभी पानी का ग्लास पेश करती हैं, कभी खाना बनाती हैं, कभी कुछ, दिल में ख्वाहिश क्या है कि सब मेरी तारीफ करें। जुमला लिख लीजिए, जब तक आप इस जुमले से बेनियाज नहीं होते ना कि सब मेरी तारीफ करें, मुझे कबूल करें, तब तक तारीफ नहीं मिलती। ये मैंने बहुत सालों की कोशिशों के बाद सीखा है। हम दूसरों की नज़रों में बड़ा बनने, कबूलियत लेने, उनसे तारीफ कराने की कोशिशों में घुल जाते हैं। मिलेगी उस दिन जब इनाजरिया इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन। सास की खिदमत करें, अजरिया इल्लाह। आप कहते हैं शायद ये दीन के काम का अजर है, अंबिया कराम ने कहा था इस तबलीग के बदले में अल्लाह से अजर लूंगा, अच्छा खाना किसी को खिलाते हो अल्लाह के अजर से। यकीन करें, शौहर की, बच्चों की, ससुराल की, उस्तादों की, जिसकी भी आपने कोई खिदमत करनी है या कुछ उनके लिए करते हैं ना, अल्लाह के लिए करके देखें। आप कहते मेरे शौहर कहें कि बस मैं तो ऐसी बीवियों के हर जगह वो मेरे गुण गाएं, नहीं गाएंगे, वो किस दिन गाएंगे, जब आप इन जुमलों से आज़ाद हो जाएंगी। बास लोग होते हैं ना, वो इस ख्वाहिश में रहते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ करें। कबूलियत मिल जाए तो अल्लाह का हुक्म है, नहीं तो जिम्मेदारियां निभा के दुनिया से चले जाएं। हर बीवी को शौहर कोई नहीं कबूल करता, बस आप देखें कि अल्लाह ताला जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मैं इनके से ज्यादती तो नहीं कर रही, ठीक है, अपने ससुराल की खिदमत करके देखें, अल्लाह ताला मैं जो कर सकती हूँ कर रही हूँ ना, اب یہ خوش ہیں، ان کا موڈ سیدھا ہے، یہ ناراض ہیں، آنے والوں کو میرے گیت گاتی ہیں کہ نہیں، یہ آنے والوں سے میری برائیاں کرتی ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ یہاں سے اٹھا کے نا وہاں رکھ دیں اس بندے کو، آپ دیکھیے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ ایسی بہت ساری عملی کہانی ہے جو اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتی، بات لمبی نہ ہو، لیکن آج سے یہ بات نکال دیں دل سے، کہ ہر جگہ نکال دیں کہ کوئی مجھے قبول کر لے یا مجھے اپریشیٹ کرے۔ تیسری چیز، تیسری رکاوٹ، یقین کہاں سے لاؤں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر اور باصلاحیت انسان ہیں؟ جواب دیں۔ یعنی آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ باصلاحیت ہیں اور بہتر ہیں؟ حیرت میں گم ہو رہے ہیں آپ؟ جب مجھے پہلی بار اس بات کا پتہ چلا، میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اور جوں جوں میں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کیا، اگرچہ یقین تھا کم بخت کہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن جس دن آ گیا میری زندگی میں ہلچل مچتی گئی۔ اپنے ہی خلاف اپنے تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یقین کی ایک چھوٹی سی رمق میرے دل کے کونے میں جگمگا رہی تھی۔ اس چنگاری نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ کچھ کر گزرنے کا جنون میری نس نس میں بھر گیا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہونا شروع ہو گیا کہ میں واقعتاً اپنی سوچ سے کہیں بہتر اور باصلاحیت ہوں۔ اس کے بعد جوں جوں یقین بڑھا، میری ذات کی بہتری اور صلاحیت بھی بڑھتی گئی۔ بہت سے ایسے کام جنہیں میں اپنی قابلیت کے دائرے سے باہر محسوس کرتا تھا، رفتہ رفتہ میرے لیے آسان ہوتے گئے۔ تاہم مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی اپنے بارے میں میرا یقین ماند پڑا، یعنی انڈر ایسٹیمیٹ ہونا لکھ لیں اس کو، یعنی جب ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں، میرے میں خوبی کوئی نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتی، تو پھر انسان ناکام ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے نہیں، آئی کین ڈو دس، اٹس پاسبل، تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جب اپنے بارے میں یقین ماند پڑا، کئی کاموں میں میری قابلیت جو کہ ثابت شدہ تھی میرے ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ اس بے یقینی کی وجہ سے اعتماد سے ہونے والے کاموں میں بھی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ بات اگرچہ بڑی مشکل ہے، لیکن خود کو گاہے بگاہے یاد دلاتے رہیے کہ آپ اپنی سوچ سے بڑھ کر ذہین، باصلاحیت اور قابل ہیں۔ اس کا مطلب خود کو خوش فہمیوں کے بھروسے چھوڑ دینا نہیں ہے، یہ دراصل حوصلے اور ولولے کی وہ ایڈ ہے جو آپ اپنے آپ کو بطور تحفہ خود دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ بیرونی ایڈ کا انتظار کرتے رہے، تو یہ جان لیوا انتظار شاید کبھی ختم نہ ہو۔ پچھلی بات سے جوڑ لیجئے اس کو، آپ نے پوری کوشش کر لی، سسرال کو خوش کرنے کی نہیں ہوئے، شوہر سے تعریف لینے کی نہیں ملی، بچے آپ کو اپریشیٹ کرے نہیں کرتے، دوستیں آپ کی نہیں کرتی، اب آپ کیا کریں؟ آپ خود کو اپریشیٹ کریں، یہ چیز ہے، یقین لائیں۔ یس آئی ایم ویل وشر، یس مجھے پتہ میں سنسیئر ہوں، جی مجھے پتہ میں مخلص ہوں، جی مجھے پتہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے پتہ یہ آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ اس طرح خود کو یقین دلائیں۔ یہ جو دوسروں سے ہم لیتے ہیں نا، ہمیں چھوٹے چھوٹے ادھر سے وہ جیسے کہتے ہیں نا تھپکیاں، کوئی دیتا رہے، کوئی نہیں دے گا آپ کو۔ وہی بندہ حالات سے جنگ کرے گا جو خود کو ریئل میں ڈسکور کرتا ہے۔ ایک منٹ سے بھی کم دیر لگتی ہے حوصلے کے ٹوٹنے میں، پتہ ہے آپ کو؟ سانس تو اکھڑتے اکھڑتے ہو سکتا ہے 3-4 منٹ لگتے ہی ہوں گے، ایک منٹ سے بھی کم میں آپ کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا آپ کوئی چیز بنائیں بڑے دل شوق سے، اور کسی ایک نے آ کے آپ کو کہا نہیں ایسا نہیں ایسا، مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے، کرنا جی کر سکتے ہیں، ہوگا جی ہے، اتنے میں کسی ایک بندے نے میٹنگ میں آ کے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، 20 کی بات ادھر اور 1 کی بات آگے۔ یہ کمزور پرسنالٹی کی بات ہے۔ میں یہ باتیں کرتی ہوں تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں، تنکے جتنی جان تھی لیکن پہاڑ بن گئے تھے، جس بات کو سمجھ جو لیا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہونا۔ عمر جیسے جری، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک اپنے اندر بہت حوصلہ رکھنے والے شخص کو ابو بکر جیسے کمزور شخص کی بات ماننی پڑتی تھی، کیونکہ ابو بکر کو یقین تھا کہ میری بات सच्ची है, तो आपके अंदर यकीन नहीं है ना, तो प्लीज आप कुछ नहीं करें। आप तो एक वक्त का खाना अपने बच्चे को नहीं खिला सकते। आप कहते हैं आज आलू पालक पकानी है, फिर आप कहते नहीं, एक बच्चा तो आलू खाता नहीं, दूसरा पालक नहीं खाता, तीसरा गोश्त के बगैर नहीं खाता, चौथे को तो अमेरिकन खाना चाहिए। आप आलू पालक भी नहीं पकाएंगे। आपके नहीं, आलू पालक पकी है और मुझे यकीन है कि मैं अपने हर बच्चे को यही खिलाऊंगी। फिर किसी को बातें सुनाकर, किसी को लाड से, किसी को आलू खिला के, किसी की पालक हटा के, किसी को ये कह के आज आलू पालक खा लो, कल पिज्जा बना दूंगी, आप खिला लेंगे। लिख लें इस बात को, यकीन मोहकम अमल पहम। पक्का यकीन हो और अमल पहम, कंटिन्यूसली अमल करते रहें। यकीन मोहकम अमल पहम, आगे आखिरी आ रहा है कि यही है जिहाद जिंदगानी में, यानी ये चाहिए मुझे और आपको। इसके लिए आप अपने अंदर से बेयकीनी की रुकावट निकाल दें। चलिए चौथी रुकावट, जो सुनते ही आप मुस्कुरा जरूर पड़ेंगे। जनाब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप तो मुस्कुराने की बजाय खिलखिलाने लग गए। ये किसकी बातें हो रही थी? किसके पास टाइम नहीं है भाई? आपके पास नहीं है। दें सारे थोड़ा थोड़ा इनको, 5-5 मिनट दे दें सारे इनको। अपनी हर नाकामी की सारी जिम्मेदारी बेचारे वक्त के कंधों पर लाद दी जाती है। यानी इनका ख्याल है कि इनकी घड़ी में 24 की बजाय 23 घंटे हैं या 22 घंटे हैं, राइट? तो हम वक्त पर डाल देते हैं, मेरी घड़ी में 24 की बजाय 20 घंटे हैं। वक्त की कमी का शिकवा तो हर कोई करता है। चलो एक मैं भी सही, यानी सबके पास वक्त नहीं आजकल, तो मेरे पास भी नहीं है। क्या आप भी इन अफराद में शामिल तो नहीं जिनके पास अपनी लैंग्वेज की महारत बेहतर बनाने, नए उलूम सीखने, किताबें पढ़ने, अपने फील्ड पर यानी अपने शोबे पर उबूर हासिल करने, अपने हुनर में दस्तरस हासिल करने, अपने माशी आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने, अपनी सेहत को बेहतर बनाने, अपने प्यारों से नाराज़गियां दूर करने, अपने दोस्तों के साथ मौज मेला करने और अल्लाह के साथ टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का वक्त ही नहीं है? यानी किसी काम का भी वक्त नहीं है। वक्त तो सबके पास एक जितना है, हुकूमतें चलाने से कंपनियां चलाने वालों तक, जहाज उड़ाने से पतंगे उड़ाने वालों तक, सब के पास हफ्ते में, बोलिए कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने घंटे? 24x7 168। हर हफ्ते में 168 और दिन में 24 घंटे ही होते हैं। क्या वक्त की कमी के बहानों ने आपको औसत दर्जे का इंसान तो नहीं बना दिया? एवरेज, जिसको आप कहीं इकोनॉमिक क्लास में सफर करने वाले। क्या बुराई है औसत दर्जे से ऊपर उठकर आला दर्जे की कामयाबी हासिल करने में? आला पाए का मैनेजर, शायर, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, डॉक्टर, उस्ताद होना कोई शर्म की बात है क्या? पस्त दर्जे पर आप ज्यादा खुशी मनाएंगे या आला दर्जे पर फायज होना आपके लिए फख्र की बात होगी? वक्त की कमी के बहाने आपको वक्ती तकलीफ से तो आप बचा लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल तकलीफ को आपके मुकद्दर में लिखवा के दम तोड़ते हैं। ये लिख लीजिए, हम वक्त की कमी का बहाना करते हैं तो वक्ती तकलीफ से बच गए ना, लोग मान जाएंगे, लेकिन एक मुस्तकिल तकलीफ आपके मुकद्दर में लिखी जाएगी। इन बहानों से आपको कौन सी वैक्सीन बचा सकती है? इस वायरस के लिए कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल किया जाए? सबसे पहले तो इस वायरस की मौजूदगी को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। बहाने का कबूल कर लिया जाना ही 50% छुटकारे का ज़ामिन है। क्या पता चला कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो 50% तो हम लाइबिलिटीज से खुद को रिलैक्स करते हैं। ये होना कोई नहीं छोड़ देते। और मैंने इस चीज़ को देखा है दौरे कुरान करवाते हुए। एवरी डे ऐसे लगता है इम्पॉसिबल टारगेट है, इम्पॉसिबल टारगेट। अगर आप कोई थीम लेकर चल रहे हैं, सादा तर्जमा और मुख्तसर सी वजाहत, नो प्रॉब्लम, 2-2.25 घंटे बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े अच्छे बल्कि स्मूथ गुजरते हैं। लेकिन आपने जो देना होता है वो देना, हर पारे से पहले आपको यकीन होता है आप नहीं दे सकेंगे, बिलीव मी। लेकिन उस वक्त में चूके करना है, पारा हो जाता है। यानी हर दिन एंड लग रहा था आज का पारा फिर नहीं पूरा होगा, लेकिन हो जाता है। आखिरी पारा मैं सोचती हूँ, आखिरी रूप अमूमन 15 से 20 मिनट में भी होता है, आपको तो अब ये बातें नहीं पता ना, जब कभी पढ़ें पढ़ाएंगे तो देखेंगे, पढ़ाने वालों को पता होती है। पहला रूप 45 मिनट का लिखा होने के बावजूद भी 1 घंटे पे ऊपर जाता है, क्योंकि नया फ्रेश जज्बा सब, आखिर में वो 45 मिनट जो है वो आपके 15 से 20 मिनट रह चुके होते, हो जाता है, क्योंकि पता वक्त है ही इतना। जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी का इस तरह से मुहासबा करेंगे तो ऐसे ही होगा। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूं, इसमें ख़तरनाक है, पूरे एक वीक का दूं कि एक दिन का दूं, वीक का दे दूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसा ना करे, आप सबको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट मंडे आपकी रुखसती है, आज का आपका मंडे आखिरी मंडे, कल का ट्यूसडे आखिरी ट्यूसडे, वेनसडे, यानी हफ्ते का हर दिन आपका आखिरी दिन है, तो आप इस हफ्ते को कैसे गुजारेंगे, लिख के लाइए, मैं यहाँ सबसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका ये एक हफ्ता है, तो आप कौन से रुके हुए काम करेंगी, प्रायोरिटीज क्या होंगी, फिर बताइए इस एक हफ्ते में आप क्या कुछ कर गई, या फिर डिप्रेशन की गोलियां खा के पहले ही एक हफ्ता फौत हो जाएंगे। वक्त कम नहीं होता, हमारा हौसला कम होता है, हमारी स्पीड कम होती है, कोई अंदर गोल नहीं होता। चलिए पांचवी रुकावट, इस पे भी आप में से आधे से ज्यादा लोग तो मुझे देखेंगे, अभी देख लें। पांचवी रुकावट, मैं तो बीमार हूं। अब देखा है, एक ने भी नहीं देखा, देखे मुझे, अब देख लिया ना आपने, मैं तो बीमार हूं, ये भी एक रुकावट है। खुद शिकस्तगी के मारे लोगों के पास अपने खिलाफ एक बड़ा हथियार सेहत की खराबी का बहाना होता है। मैं तो बीमार हूं, कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। अब देखिए, इस आदमी को मैंने नहीं बताई ये बात, ये किताब से पढ़ के बता रही हूं, मत आप सोचे ये मैं खुद से बातें कर रही हूं। कहते हैं कि मैं तो बीमार हूं, कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। कितने ही लोग हर वक्त जब वो बजाहर बिल्कुल ठीक ठाक हों, जाने क्यों दूसरों को यह साबित करने पर तुले रहते हैं कि इनकी सेहत ठीक नहीं है। सेहत की खराबी का बहाना करके हम खुद को वो बहुत कुछ पा लेने से रोके रहते हैं जो कदम उठा लेने की सूरत में हमारा मुकद्दर बन सकता था। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी, कमजोरी या बीमारी को आड़े नहीं आने दिया? आज मैं मॉडल टाउन पार्क में एक ऐसे शख्स से मिला हूं जो पार्ट टाइम वेट मशीन पर वॉक के लिए आए लोगों का वजन करता है, लेकिन दरअसल वो हर किस्म के मोबाइल फोन रिपेयर करता है। और ये जानकर हैरान मत होइए कि मोबाइल फोन के नित नए डिजाइनों की मरम्मत करने वाला ये नौजवान शख्स शमशाद हुसैन आंखों से बिल्कुल नाबीना है। एक अंधा शख्स लोगों का वेट भी करता है और उनके सेलफोन्स भी ठीक करता है। ऐसे ही लोग हैं जो बहानों की जंजीरों को तोड़ डालते हैं, किसी मुश्किल को नहीं मानते, किसी तकलीफ को रुकावट नहीं समझते, और किसी चैलेंज को खातर में नहीं लाते हुए वो सब कर गुजरते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सोचकर ही हैरान रह जाते हैं। मैं अपने फिटनेस कोच जीशान हैदरी से बस इतना ही कह पाया था, तो क्या बीमारी और सेहत की खराबी को आपके रास्ते की दीवार बनने दिया जाए? प्लीज आज ही से सर दर्द से दोस्ती तर्क करने का ऐलान कर दीजिए। सर दर्द तब होता है, आप में से तो नहीं किसी को, और अभी बता दूं फिर क्यों होता, सर दर्द तब ही होता है जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता। लिख ले, सर दर्द होगा या मकसद होगा, मकसद नहीं है तो सर दर्द होगा। आपके मकसद में इतनी ताकत होनी चाहिए जो सर दर्द जैसी रुकावटों को पिछाड़ सके। देखिए, अगर अभी आपको कहा जाए ना कि 135 पे नीचे मेन डोर पे पहुंच जाए और उसके लिए बाहर 9 का एक बंदा खड़ा है 10,000 करोन लेकर, सिर्फ 3 मिनट में यहां से मेन डोर तक जाना, कितनों को याद रहेगा सर दर्द? तो 10,000 तो बहुत छोटे हैं। मकसद की धुन तो वल्लाह ही खाने पीने जान बा हर चीज से बेन्यास करती है, बिस्तर से उठा देती है बंदे को। मेरी जिंदगी में ऐसे कई दिन आए जब जिस्म दर्द से दुख रहा होता था, टांगें अपना ही बोझ सहार नहीं पा रही होती थी, नींद से आंखें बोझल बोझल होती थी, और सबसे बढ़कर सुबह सवेरे उठने की बजाहर कोई वजह भी नहीं होती थी, लेकिन नींद की मस्ती में खुद को मनफी बातें सुनाने की बजाय, मनफी बातें क्या होती हैं, सोए रहो और लपेट लो ऊपर कंबल को। सुबह उठ के तो हर एक ही बीमार होता है। जब मुझे सुबह सुबह किसी का मैसेज आता है ना कि मैसेज को मैं नहीं आ सकती, तो मैंने कहती हूँ कि आप थोड़ी सी देर बाद अपना हाल पूछें, इंशाल्लाह आप ठीक होंगी तो फिर आ जाइएगा। तो सुबह सवेरे तो हर बंदे का अंदर यही कह रहा होता है बिस्तर ना छोड़ो। कहते हैं मैं सुबह सवेरे नींद की मस्ती में खुद को मनफी बातें सुनाने की बजाय एकदम जंप लगाकर बिस्तर से कूदता हूँ। इस जंप में आज के दिन को जिंदगी का यादगार दिन बनाने का अहद होता था। सोचिए जरा, यानी आज अभी देखिए ब्रेक से पहले हमारा एक छोटा सा सेशन हुआ है ना, क्या आप सोचते हैं अगर आप ना होते उस सेशन में तो आप किसी खुशी से या किसी बात से महरूम रह जाते? जो अब आप अपने अंदर जोश जज्बा पा रहे हैं वो नहीं पा रहे होते ना, ऐसे ही होता है। जो नहीं आते वो पीछे रह जाते हैं, उनका इससे काजर कोई और ले जाता है, ड्यूटी उनकी किसी और को मिल जाती है, उनका ख्याल ही नहीं आता। फिर तो क्या महरूम हुआ, क्या निकला, जिंदगी से नेकी का एक मौका निकल गया। तो कहते हैं मैं उस दिन क्या सोच के निकलता, दोबारा सुनिए, बड़ी काम की बात है। इस जंप में आज के दिन को जिंदगी का यादगार दिन बनाने का अहद होता है, बावजूद इसके कि इस दिन मुझे कहीं से कामयाबी की कोई नवीद मिलने का इम्कान ही नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं दिन का आगाज एक नई उमंग और वलवले से करता था। आप कहते आज तो कोई खास काम ही नहीं, मेरे बगैर तो सब हो ही जाएगा। पता चला आज आप ना जाकर कितनी बड़ी खैर से महरूम हो गए। हर वो दिन जब मेरा दिल नरम बिस्तर में घुसे रहने पर माइल होता था और अपनी बात मनवाने की दर्जनों दलीलें दे रहा होता था, और कई बार इन दलाइल को सुनकर सचमुच मुझे सर और जिस्म में दर्द और थकावट महसूस होने लगती थी, मैं दलाइल को रद्द करके एक पुरजोश दिन की शुरुआत करता था और हैरतनाक अंदाज में दर्द और थकावट दुम दबा कर भाग जाती थी। यह आप में से किसी के साथ हुआ कभी? आप बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सुबह उठे तो आपको लगा मैं बीमार हूँ, फिर आपने वैसे ही एक जंप लगाया ये जो बता रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लगा कि मैं तो आज बिल्कुल ठीक हो गई हूँ? हुआ कभी के नहीं?
कई दफा ऐसा होता है कि घर में होता कहाँ,
सिर्फ वॉशरूम में जाके गर्म पानी के नीचे खड़े होने की देर है, सब ठीक हो जाता है। जी आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये इनसे पूछवाना था, अभी अंदर आती हैं, कि अगर घर में होती तो क्या हाल, और वाकई वो बीमार होती। याद रखिए जो घर रहते हैं वो झूठ नहीं बोल रहे होते, वो वाकई बीमार होते हैं, उनका जिस्म भी टूटता है। जाहिर है कि ना मुंह धोया, ना उठे, ना कंघी की, घर वाले भी आपकी शक्ल देख के फिर सो जाते हैं कि इससे तो बेहतर है हम भी आंखें बंद करके रखें और उठे तो हमें भी चाय पिलानी पड़ेगी, तो आपका हाल क्या होगा? निकाहत में पड़े रहेंगे और घर में है कौन आपको देखने वाला? इधर किसी ने आपको मशवरा देना है एस्प्रिन ला दूं, किसी ने कहना डिस्प्रिन ला दूं, किसी ने कहना कावा पी लो, ग्रीन टी ले लो, अच्छा धूप में बैठ जाओ, छांव में बैठ जाओ। इंसानों में हम आके खुश हो जाते हैं, अकेला बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बिलाखिर। तो लिहाजा ऐसी दलीलों को नहीं सुनना। क्या आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं जो हर वक्त तबीयत ठीक नहीं का रोना रोते रहते हैं? ये नासाजिए तबीयत हमसे कितने मौके छीन लेती है, कितनी कामयाबियों के इम्कानात को हमसे मिलने नहीं देती। आपकी रुकावटें क्या कहती हैं? अभी हमने ये जो की हैं, अब इसमें से आपने अपनी ढूंढनी है। पांच की है हमने, शुरू में छह कहा था लेकिन पांच ही लिखी हुई इधर, बाकी आप खुद ही जमा हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप और मैं जरा इसमें से अपनी ढूंढें। आपकी रुकावटें क्या कहती हैं? किस चीज ने आपका रास्ता रोक रखा है? कुछ लोगों ने खुद को पिछाड़ने का कुछ ज्यादा ही पक्का अहद कर रखा होता है। ये लोग अपने ही खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, वो खुद को अपनी ही बेवकती के जाल में फंसा लेते हैं। खुद को शिकस्त देने पर तुले अफराद की शिनाख्त क्या है, बल्कि इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं? नहीं। क्या आप आज तक खुद से कभी नहीं मिले? क्या वाकई आपने कभी अपने खिलाफ कोई साजबाज नहीं की? अपने खिलाफ साजिश करने का मतलब समझते हैं आप? यानी हर चीज के पीछे आप खुद हैं, ये मुराद है। पांच रुकावटें, हर एक के पीछे कहीं आपकी सोच, कहीं आपका ख्याल, कहीं आपकी नियत। जब आपको इल्म हो कि आपने कहाँ पहुँचना है, आप अच्छी तरह से बाखबर हों कि पहुँचने के फ़ायदे और ना पहुँचने के नुकसानात क्या हैं, लेकिन आप कदम उठाने की बजाय कदम हटा लेने की राह चुने, तो आपके अलावा और कौन है जो दुश्मन से जा मिला हो। समझे? यानी आपके दुश्मन से कौन मिला हुआ है? आप खुद मिले हुए। जब आप जानते हैं कि कदम उठा लेना ही मंजिल पर पहुंचने की जमानत है, तो कदम रोक लेने की पॉलिसी पर आप किसके इशारे से अमल पैरा हो रहे हैं? जानते बूझते आप खुद को कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ कैसे धकेल सकते हैं? आप खुद के पीछे इस तरह हाथ धोकर कैसे पड़ सकते हैं? आप आ बैल मुझे मार की चलती फिरती मिसाल कैसे बन सकते हैं? अपने रास्ते की सारी रुकावटों, पत्थरों, दीवारों को बता दीजिए कि आप किसी रुकावट को खातिर में लाने वाले नहीं। आपने फैसला कर लिया है कि रुकावटों को पामाल करना है, क्योंकि आप जान गए हैं कि रुकावट से आगे आपकी जीत है। तो जिनको जीतना होता है फिर वो रुकावटों का नाम नहीं लेते। अब आप बताइए कि कोई ऐसी रुकावट जो इसमें नहीं आई और आपकी जिंदगी में, उसको भी जरा बता दें। जी आप बताइए। सुस्ती की रुकावट, ठीक है। और जी आप, बच्चों का बहाना, बिल्कुल, बच्चे नहीं आने देते आगे, काम वो नहीं करने देते। और नींद का बहाना, टाइम मैनेजमेंट की कमी रुकावट है एक बहुत बड़ी। और जी आप, जी हम चले गए तो घर ही नहीं होना, वो एक औरत थी ना, तो वो कहीं जाने वाली थी दूसरे शहर, तो कहती हाय मैं नहीं होंगी तो ये नहीं होगा घर में, हाय मैं नहीं होंगी सफाई नहीं आप लोगों ने करनी, आपने नाश्ता नहीं करना, आपने किचन साफ नहीं करना। तो उन्होंने कहा तुम नहीं होगी तो सूरज ने भी नहीं निकलना। बस लोगों का गुमान ही ये होता है ना, तो हमारे घर सब हो जाएगा, देखिएगा हमसे अच्छा होगा। बड़ा सोचते नहीं, शाबाश, बड़ी सोच ना होना बड़ी रुकावट है। सब बीमारियां परेशानियां भाग जाती हैं बंदे के दूसरे, जब कोई जोश चढ़ा होता है ना तो बंदे को रात दिन का फर्क नहीं फर्क लगता। चलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी रुकावटों को दूर करें। एक रुकावट ये भी कि हम अल्लाह से नहीं मांगते कि अल्लाह सखल अल्लाह मा जल तौसला, अल्लाह हमारे रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर दे। अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करना, हमारी यही जिंदगी है जिसमें कुछ करना है। ये जितने काम है ना इनको अगली दुनिया के लिए रख लें, वहाँ बहुत कम वक्त होगा। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे रुकेंगे, अल्लाह ताला हमारी कमी बेशियों को दूर करे। हम फरिश्ते तो बन नहीं सकते, लेकिन इंसान होने के नाते अल्लाह ताला हमें आसन दर्जे से अपनी सलाहियतों से फ़ायदा लेने वाला बना। बस आज एक नीयत करें कि अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम करके दुनिया से जाना है, बड़ा काम करना है। आज अपने आप को बस लफ्ज बड़े काम पे रखें, बड़ा काम, बड़ा काम, फिर अल्लाह से रास्ते मांगे, देखिएगा अल्लाह ताला आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगा। ठीक है जी आप।
जी एक बात करना चाहती थी, डर की, के डर तो नहीं है लेकिन यह कि ख्याल होता है कि मियां का अगर देर से गए तो मियां का,
इस उम्र में भी खैर से अल्लाह आपके मियां को सलामत रखे। कितने साल हो गए शादी को? कितने साल हुए?
74 में शादी।
कितने हो गए बच्चों, हिसाब लगाओ जी। अल्लाह ताला आपको और भी साथ दे। 41 के सालों के बाद भी मियां का डर नहीं खत्म हुआ तो मैं आज
नहीं होता। लेकिन यह कि उनका ख्याल होता है कि खाना लेट,
ख्याल तो बड़ी अच्छी बात है, डर अच्छी बात नहीं है।
लेकिन यह कि जो भी काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी का करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए कर रही हूँ, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है।
हम में से तो कई लोगों की उम्र भी इतनी नहीं होगी जितनी देर खैर से आप साथ रह चुके हैं ना, तो डर को समझिए। ठीक है जी आप इधर से।
हमारे जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी एक होते हैं लेकिन जैसे हमारे छोटे बच्चे तो वो काफी हमारा टाइम लेते हैं, उनके साथ में बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम घर नहीं है तो मैं उनको जो जो काम बोल के जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा उल्ट हुआ होता है।
तो आप उलट बता जाया करें ना।
तो वो मुझे ना एक किसी की बात बहुत अच्छी याद है कि आप चाहे 15 घंटे काम करते थे, 16 घंटे वो आपका काम नहीं गिना जाएगा, आपका काम वो जब आप घर में आके अपने बच्चों के पास आते हैं। तो वो फिर हमें होता है कि उस चीज का मुझे बहुत डर होता है कि हमारे बच्चे की इस चीज में ना पड़ जाए कि हम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वो की दूसरी चीजों में पड़ जाए, या फिर आजकल आईपैड हम उनसे कितना कुछ पा सकते हैं, तो ये चीज है ना, ये हमें ज्यादा डराती है, ये मियाँ के डर या इन चीजों के डर, ये चीज नहीं हमें डराती, मुझे ये चीज डरना चाहिए।
जी आप देखिए कि ये बात जो आप इन्होंने कही कि घर ना हो तो बच्चे पीछे, आपका यानी बात के अंदर से एक्सट्रैक्ट ये था कि हम ना हो तो हमारे बच्चे पीछे अनअटेंडेड रहेंगे, और एक तो जो हम कह के आते हैं वो उसे उलट करते हैं, उसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो दूसरा ये कि वो कोई ऐसी चीज़ें देख लेंगे, कुछ हो गए। देखिए बचपन से गोद का बच्चा है अभी ना, तो उसको अल्लाह का डर दे, अम्मी घर हैं कि नहीं है, अब्बू घर हैं कि नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ आज तुम देख लेना कोई गेम या कोई फिल्म आज देख लेना। बच्चों के दिल में इन चीज़ों को इस तरह से पक्का कर दें कि बिल्कुल उनको इस चीज़ का एहसास ही ना हो। कल मैं घर में गई जब, तो घर में थी, आप पता नहीं कहाँ थी, मुझे नहीं याद है कब की बात है, तो सर मुझे कहते हैं कि म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो बच्चों को मना करो। तो मैंने कहा म्यूज़िक किधर है, कहते हैं मार्क छोटा बच्चा जो आपके ना उसके हाथ में कोई फ़ोन है तो उस पर कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ना, उन्होंने पता नहीं कोई गेम होगी खुली हुई हो, इनको हल्की सी भी आवाज़ आ गई ना। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि इतना छोटा बच्चा है ना, अगर अभी इसको पता है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो जब इसका शऊर शुरू होगा तो इसको समझ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों के सर पे तुम कभी भी नहीं बैठ सकते, लेकिन वही पता कि अल्लाह देख रहा है। अब घर में भी है ना, तो बच्चे तभी वो काम करेंगे जब अल्लाह के लिए उनके दिलों में डालेंगे। और दूसरी बात याद रखें कि मूसा की माँ ने अपने बच्चे को दरियाओं में डाल दिया। कल रात को मैंने कोई वैसी वीडियो देखी, किसी की को बच्चा पानी में डूबा हुआ था, आवाज़ किसी को बच्चे के रोने की आ रही है, किधर से आ रहा है, तो देखा तो कोई चीज़ थी अंदर पानी में, तो दो लोगों ने उसमें जाकर डंडी डाल के निकाल, तो काला शॉपर था, तो उनको उसको उन्होंने बाहर खोला तो उसमें बच्चा था, तो बच्चा रो रहा था, न्यूबॉर्न बेबी था। एक वीडियो थी कोई किसी की ना, तो वो यही कि अल्लाह ने उसको बचा लिया उस बच्चे को। तो ये दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बचा ले, और जिस हद तक मुमकिन हो बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों में छोड़े कि ये काम मेरे तक करना है आकर ये होगा, तो फिर इंशाल्लाह उससे बच्चे समझते हैं। बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, और हम अगर किसी और के बच्चों की सलाह की कोशिश करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर जो हमारे बच्चों की सलाह ना करें। जी आप
सर, इसमें ऐसा होता है कि आप बेशक एक ही किस्म का घर में, जैसे मैं भी देखती हूँ कि मैं एक ही टेक्निक का बच्चों को, ये यही होता है दीन की बात, वो इकट्ठे बैठ के उनको बताना होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि किसी बच्चे को असर होता है, किसी पे नहीं भी होता। तो अभी से हमारे में इकराम थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मुझे कभी भी कोई चीज़ नहीं कहनी पड़ती, लेकिन अब वही चीज़ है जो हमारे घर का वही माहौल इस तरह है, तो लेकिन वही असर जो है वो दूसरे बच्चे पर नहीं हो रहा होता। तो लेकिन फिर जब आप कहीं और जगह पर टाइम लगाते हैं जैसे दीन के पे, तो जब आप ऐसी चीजें देखते हैं तो बहुत शैतान है, तो वो आपके जहन में कहता है कि नहीं देखो तुम्हें टाइम देना है, तो वो उसमें भी समझ नहीं आती कि मतलब क्या
आप ये सोच लेना कि अगर इनको दिया तो भी नहीं फायदा होगा किसी चीज में, तो फिर उसको तो दे दूं कि जिसको फायदा होगा, राइट। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही तजर्बे करके सीखते हैं, ये भी याद रखें। माँ जो बच्चे को जितना मना करती है ना, बच्चा उधर ही जाता है, और फिर उधर उंगली चबो के दर्द लेकर आएगा तो फिर ही बाज आता है। तो बस ये दुआएं के साथ ही मुझे लगता है ये मामला अल्लाह के हाथ में डाल देना चाहिए कि अल्लाह ताला आसान करे। जी बिल्कुल
हमारे बंदा हमारे
जी,
जितना
बिल्कुल सही कह
इम्तिहान
रहे
है,
हैं।
तो हमें उनके भी जाहिर है वो मेहनत करनी, अभी वो हमारे जैसे मैं उनको नहीं कहती उनके पढ़े कि हमारे भी छोटे हैं, तो हमें उनकी वो बुनियादी बनानी पड़ेगी कि कल को 14-15 साल के हो जाते तो हमें वो टेंशन ना रहे, हमारे दिमागों में वो घूमे ना कि वो हम बच्चों को अकेला भी भेज रहे हैं तो हमें ये ना हो कि फिक्र ना हो कि ये पता नहीं क्या हो जाए क्या कर दे, ये ना हो। तो इस
बच्चों को साथ रखें, इसका एक बेस्ट टिप पता क्या है कि आपके बच्चे अगर स्कूल से घर हैं और आप किसी अच्छे काम में हैं, तो बजाय इसके कि उनको अकेले घर छोड़ें, उनको अपने साथ रखें और पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। बल्कि वो मेरा ख्याल है, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे पास बच्चा तो मैं तो उसको गोद में लेके पढ़ाऊं, मैं तो उसको अपने साथ रखूं, मैं उसको अपने मियाँ के साथ मस्जिद में भेजूं। क्यों भेजूं, क्या सोच के, कि आदत हो जाए। जब बच्चे माओं को भागता दौड़ता देखते हैं, और यकीन करें आप माने ना माने, जो बच्चे यहाँ आते हैं अपनी माओ के साथ और अपनी माओ को काम करता और देखता और कहते हैं अच्छा अभी कर लें ये करते हैं, ये उनकी वो खामोश तरबियत हो रही है जब घर बैठ के नहीं कर सकते, माने के ना माने, इसका आपके बच्चों के अंदर असर जा रहा है कि दीन की तालीम है या स्कूल है, उनके जहनों में जरूर बड़े होने पर यह आएगा कि दीन की तालीम ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम अपनी माँ के साथ दो दो घंटे वेट करते थे। हाँ झूठ ना बोले, ये ना कहे कि 2:30 बजे आएंगे, कहते 4 बजे आएंगे, डरते हैं आप बच्चों से, 4 बजे जाना है ना तो 4 बजे का लारा लगाए, 3 का ना लगाए, फिर गलत होगा, और प्लान बना के लाए। बच्चे के क्लास के बाद इतना वक्त है, उनको इधर नैप देना है, सो जाएं, अपने छोटे छोटे बस्ते साथ ले आएं, इधर बेटा आपने 1 घंटा ये काम करना है, अभी सोना है, अभी खाना खाना है, उनको फील कराएं कि ये हमारा घर है, इट्स जस्ट लाइक होम। तो बच्चों को हर वक्त खेलते खेलता भी रहना कोई बड़ी बात नहीं होती, पॉजिटिव चीज़ों में लगा, उनको मेंटली काम दे, अपने साथ लगा लें, अच्छा ये पर्चियाँ तुम गिनो, अच्छा ये फ्लोर से पिकअप तुम करो ट्रैश, तो बच्चों को साथ रखें तो मुझे लगता है ये सारे ही मसलों का हल है। ठीक है, रुकते हैं इधर इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।